व्याकरणों ने ये बताया था कि अस्थि इत्यादि स्थल में व्यापार अर्थ रहता तो है, लेकिन फल समानाधिकरण व्यापार होने के कारण स्पष्टतया उसकी प्रतीति नहीं होती है। इस पर मीमांसक आक्षेप करते हैं कि अगर आप अस्थि आदि स्थल में भी व्यापार अर्थ मानेंगे तो ननु एवं किम करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरस्य इव। जैसे कोई पूछता है किम करोति कि क्या करता है, यहाँ व्यापार के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या काम कर, क्या कौन सी क्रिया करता है, किम करोति, तो उसके उत्तर में जवाब मिलता है पचति माने पाक क्रिया करता है। तो इसी तरह से फिर अस्ति इति उत्तरम अपि स्यात्, ऐसे ही जो है ना, जैसे पचति के द्वारा किम करोति का उत्तर दिया जाता है, ऐसे ही किम करोति का उत्तर जो है अस्ति के द्वारा भी होना चाहिए। जबकि व्यवहार में ऐसा होता है क्या, किम करोति अगर पूछेगा तो कोई कहेगा अस्ति, नहीं कहेगा। तो यही मीमांसकों ने कहा कि इस तरह का अस्ति उत्तर नहीं होता है किम करोति का। इससे सिद्ध होता है कि अस्ति में असधात का अर्थ केवल फल है, व्यापार नहीं है। इसका जवाब वैयाकरण देते हैं कि इष्टापत्ते है कि अगर ये जो आप आपत्ति दे रहे हैं कि अस्ति इस तरह का उत्तर आने लगेगा इस किम करोति प्रश्न का, तो इसको कहें इष्ट आपत्ति कि ये आपत्ति हमें इष्ट है, हम चाहते हैं कि अस्ति के द्वारा भी जो है ना, जैसे पचति के द्वारा किम करोति का उत्तर दिया जाता है, ऐसे अस्ति के द्वारा भी उत्तर दिया जाना चाहिए। अब इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे ये उत्तर सही होगा अस्ति के द्वारा। आगे कहते हैं आसन्न विनाशम कंचित उद्देश्य, किसी का विनाश आसन्न है, मान लीजिए कोई मरने वाला है, तो वह जो आसन्न विनाश व्यक्ति है उसको उद्देश्य करके अगर कोई पूछता है कि किं करोति इति प्रश्ने, अगर वहां पर किं करोति प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर पचति इति उत्तरस्य इव। जैसे किं करोति का उत्तर जो है किचन में कोई रहेगा कहेगा किं करोति तो उसका उत्तर होता है पचति, उसी तरह से अस्ति यहां पर उत्तर दिया जा सकता है और सर्वसम्मतत्वात्, और यह उत्तर जो है सर्वसम्मत है, क्योंकि वह जो है आसन्न विनाश है माने मरने वाला है, और उसके लिए पूछता है किं करोति तो उसका उत्तर अगर कहता है कि अस्ति, अस्ति का अर्थ हो गया ना वहाँ पर जीवित है, हैं, तो इस तरह से उत्तर जो है ना सबको सम्मत है। तो ये आपकी जो आपत्ति थी कि पचति की तरह अस्ति उत्तर आने लगेगा तो वह उत्तर आवे हमें कोई परहेज नहीं है, ऐसा उत्तर जो है होना ही चाहिए, सब लोग इसको मानते हैं। आगे कहते हैं इतरत्र तु सुस्थतया निश्चिते किं करोति इति प्रश्नः, कहा कि जहाँ पर आसन्न विनाश नहीं है, जहाँ पर सुस्थ है, निश्चित रूप से सुस्थ है माने स्वस्थ है, वहाँ पर किं करोति इति प्रश्न, यह प्रश्न होगा। फिर पाकादि विशेष गोचरे एव इति अवधारणात् अस्ति इति नोत्तरम इति, तो वहाँ पर जो है सामने दिखाई देता है कि वह रसोई बना रहा है या वह अध्ययन कर रहा है या वह पूजा कर रहा है, इस तरह से जब पाकादि विशेष का गोचर होता है, गोचर माने यहाँ पर दर्शन, तो पाकादि विशेष क्रिया का जब दर्शन होता है, अवधारण होता है, निश्चय होता है, तो फिर वहाँ पर अस्ति उत्तर नहीं दिया जाता है। तो दोनों कंडीशन वैयाकरणों ने बताया कि जहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति हो वहाँ पर तो अस्ति के द्वारा उत्तर आना चाहिए, जहाँ पर निश्चितता हो वहाँ पर जो है अस्ति के द्वारा उत्तर नहीं आना चाहिए, तो अस्ति के द्वारा व्यापार संबंधी प्रश्न का भी उत्तर दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर मीमांसकों के आक्षेप का जो है इन्होंने समाधान प्रस्तुत किया 12वीं कारिका में। अब 13वीं कारिका जो है उसके लिए अवतरण बताते हैं कि ननु एवं भावनायाः फलनीयतत्वात् फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् सर्वेषां क्रियावाचकत्वे सकर्मकतापत्ति रीति। आप जानते हैं कि क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सामान्य तौर पर इसको अगर सिखाना हो, किसी को बताना हो, तो कहेंगे कि जिसमें कर्म हो वह है सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म न हो वह है अकर्मक क्रिया, यही कहेंगे, ठीक है। तो कर्म, अब मीमांसक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब आप धातु का अर्थ दोनों मान लेंगे, माने फल भी मानेंगे और व्यापार भी मानेंगे, तो क्या होगा, फल होगा तो फलाश्रय भी होगा, व्यापार होगा तो व्यापार आश्रय भी होगा। तो फल मान लेने पर फलाश्रय होगा, फलाश्रय होगा तो कर्म रहेगा, और कर्म रहेगा तो सब धातु में कर्म रहेगा तो सारी धातुएं सकर्मक होने लगेंगी, कोई धातु ऐसी बचेगी ही नहीं जो कि अकर्मक हो। क्यों? क्योंकि आपने ये जो धातु का अर्थ जो है क्या माना, व्यापार माना, और व्यापार जो है वह फल नियत होता है, माने व्यापार जनक होता है और उसका जन्य जो है वह फल होता है। तो व्यापार मानेंगे तो फल मानना पड़ेगा, फल मानेंगे तो फलाश्रय मानना पड़ेगा, कर्म मानना पड़ेगा, और कर्म मानेंगे तो सबके सब सकर्मक हो जाएंगे, कोई अकर्मक धातु बचेगी ही नहीं। ये आक्षेप मीमांसक लोग देते हैं। अब पंक्ति को देखिए, ननु एवं, ननु एवं मतलब धातु का अर्थ अगर आप भावना मानते हैं, व्यापार मानते हैं, तो भावनाया फल नियतत्वात्, भावना जो होती है, व्यापार जो होता है वह फल नियत होता है। फल नियत होता है मतलब व्यापार रहने पर फल जो है वहाँ पर निश्चित रूप से होगा ही होगा, और फिर फल होगा तो फलाश्रय भी होगा, और फलाश्रय होगा तो फलाश्रय से च कर्मत्वात्, फलाश्रय में कर्मत्व आएगा, और कर्मत्व आने पर सर्वेशाम क्रियावाचकत्व सकर्मकता आपत्ति, फिर सभी धातुओं की में इस तरह का क्रियावाचकत्व होगा, माने फल नियत क्रियावाचकत्व रहने पर सब में सकर्मकता की आपत्ति आएगी, कोई अकर्मक धातु बचेगी ही नहीं। इस आक्षेप का उत्तर 13वीं कारिका में देते हैं, फल व्यापारयोः एक निष्ठतायाम अकर्मकः धातुः तयोः धर्म भेदे सकर्मक उदाहरितः। इसका अर्थ जो है आगे खुद बता रहे हैं, कहते हैं कि एक निष्ठता, फल व्यापारयोः एक निष्ठतायाम अकर्मकः, माने फल और व्यापार में जब एक निष्ठता होती है तो वह अकर्मक धातु कहलाती है, और जब भिन्न निष्ठता होगी, अलग अलग में निष्ठ होगा फल और व्यापार, तो वहां पर सकर्मक धातु कहलाएगी। इस व्यवस्था से जो है सकर्मक अकर्मक व्यवस्था बन जाएगी। तो यहाँ पर जो एक निष्ठता शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं कि एक निष्ठतायाम बराबर एकमात्र निष्ठतायाम, एक निष्ठता का अर्थ है कि एकमात्र में निष्ठ होना, एक केवल एक में ही रहे, अलग अलग में न रहे, ऐसा रहने पर किसके बारे में बताया जा रहा है, फल और व्यापार के बारे में बताया जा रहा है, कि फल और व्यापार अगर एकमात्र निष्ठ हो, माने एक में ही निष्ठ हो, निष्ठ हो माने स्थित हो, विद्यमान हो, वर्तमान हो, रहने वाला हो, तो एकमात्र में अगर स्थित है फल और व्यापार, इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न अधिकरण अवृत्तिता, कि भिन्न भिन्न अधिकरण में उसकी अवृत्ति हो, अवृत्ति हो माने अविद्यमानता हो, माने एक में ही रहे, भिन्न भिन्न अधिकरण में न रहे, अधिकरण माने जगह, तो भिन्न भिन्न जगह में न रहे, एक में ही रहे, ऐसी स्थिति होने पर अकर्मक वह धातु अकर्मक होती है। तेना का कि इस तरह की जो हमने व्याख्या की एक निष्ठतायाम की व्याख्या, क्या की इन्होंने एक निष्ठतायाम को कहा एकमात्र निष्ठतायाम, और फिर कहा भिन्न अधिकरण अवृत्तितायाम, माने एक में ही रहे और भिन्न अधिकरण में न रहे, इस तरह की जो व्याख्या की एक निष्ठता की, इसके कारण तेना गम्यादो फलस्य कर्त निष्ठत्वेपि न अतिव्याप्ति ही, ताकि गमि आदि धातु जो है उसका क्या अर्थ है, संजोगानुकूल व्यापार, उसमें जो फलस्य माने संजोग रूप जो फल है वह संजोग रूप, आप जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, इसमें जो फल होगा संजोग रूप फल वो दोनों में रहेगा, ग्राम में भी रहेगा और कर्ता जो देवदत्त है उसमें भी रहेगा, तो भिन्न भिन्न अधिकरण में रह गया ना, तो वही कहा कि कर्तनिष्ठत्व अपि, माने वो कर्तनिष्ठ भी है और ग्रामनिष्ठ भी है, तो दोनों में निष्ठ रहने पर भी अतिव्याप्ति नहीं होती है, अर्थात गम धातु जो है अकर्मक नहीं बनती है, क्योंकि हमने अकर्मक होने के लिए क्या शर्त लगा दी कि एकमात्र निष्ठतायाम, केवल एक में रहे, लेकिन गम धातु का जो फल है वह कर्ता देवदत्त में भी रहता है और ग्राम कर्म में भी रहता है, तो वह एकमात्र निष्ठ नहीं हुआ, वो भिन्न अधिकरण वृत्ति हो गया, भिन्न अधिकरण अवृत्ति जबकि होना चाहिए, इसलिए न अतिव्याप्ति, इसलिए अकर्मक का लक्षण जो है गम आदि धातु में नहीं जाता है। अकर्मको यथा भ्वादि, अकर्मक धातु कौन होती है, जैसे भ्वादि धातु है, तयो हो फल व्यापारयो हो, कारिका में जो कहा ना धातु तयो हो धर्म भेदे, तयो का अर्थ करना है फल व्यापारयो हो, कि फल और व्यापार का धर्मी भेदे, धर्मी का अर्थ यहाँ पर आश्रय करना, कि आश्रय भेद रहने पर, आश्रय वही अधिकरण हुआ, अधिकरण भेद रहने पर माने व्यधिकरण रहने पर अथवा आश्रय भेद रहने पर सकर्मक वह धातु सकर्मक कहलाती है। उक्तंच वाक्यपदीये, ताकि वाक्यपदी में भी ये कहा गया है कि आत्मानम आत्मना बिभ्रत अस्ति इति व्यपदिश्यते, अब एक वाक्य में बोलता हूँ कि आत्मना आत्मानम जानाति, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है। तो यहाँ पर आत्मानम, आत्मा जो है कर्म भी है और आत्मना जो है करण भी है। तो आत्मानम आत्मना बिभ्रत, माने आत्मा के द्वारा आत्मा को बिभ्रत माने धारण करते हुए या धारण करने पर अस्ति इति व्यपदिश्यते। अस्ति इस तरह का व्यपदेश होता है, व्यपदेश माने व्यवहार, अस्ति का व्यवहार होता है। अंतर्भावाच्च तेन, अंतर्भावात का अर्थ यहाँ पर सामानाधिकरण याद कर लीजिए कि सामानाधिकरण होने के कारण माने एक में ही रहने के कारण असौ तेन असौ कर्मना न सकर्मक, इसीलिए एक में ही रहने के कारण जो है यह अस धातु जो है वह सकर्मक नहीं होती है। यद्यपि होता दोनों अर्थ है अस धातु का, फल अर्थ भी होता है व्यापार अर्थ भी होता है। वही कहा कि आत्मानम आत्मना बिभ्रत अस्ति। अब देखिए यहाँ पर अस्ति का जो प्रयोग हुआ है किस स्थिति में, कि आत्मा के द्वारा आत्मा को धारण करने की स्थिति में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कर्म भी है करण भी है और इसलिए अस्ति का व्यपदेश हुआ माने अस्ति का व्यवहार हुआ। लेकिन फिर भी कर्म होने के बावजूद भी ये न सकर्मक, ये सकर्मक नहीं कहलाएगी अस धातु। क्यों? क्योंकि अंतर्भावात, क्योंकि इसमें जो है एक ही अधिकरण में दोनों का अंतर्भाव है, कर्म का और करण का सामानाधिकरण्य है और सामानाधिकरण्य होने के कारण यह अस धातु अकर्मक ही होगी, सकर्मक नहीं होगी। इसमें जो कारिका में विभ्रत किया उसका अर्थ बताया आगे, तेन स्वधारणानुकूलो व्यापार अत्रापि गम्यते। कहा कि यहाँ पर आत्मानम आत्मना अस्ति यह जो वाक्य है इसमें अस्ति में से भी व्यापार अर्थ प्रतीत होता है। यहाँ पर असधात का क्या अर्थ होगा, तो स्वधारणानुकूलो व्यापार, स्व से आत्मा को ले लीजिए कि आत्मधारण के अनुकूल व्यापार, ऐसा अर्थ जो है यहाँ पर आत्मानम आत्मना अस्ति में अस्ति का अर्थ होता है। तेन कर्म न सकर्मकत्वंतु न, कहा कि यहाँ पर आत्मानम जो कर्म है उसके कारण सकर्मकत्व नहीं होता है। क्यों? तो अंतर्भावात, अंतर्भाव होने से, अंतर्भाव का अर्थ मैंने बताया था ना सामानाधिकरण, वही कहते हैं फलांग से न सामानाधिकरण्य सत्वात, कि फल के साथ व्यापार का यहाँ पर सामानाधिकरण है। कौन सा व्यापार है? यहाँ स्वधारणानुकूल व्यापार है, उसका सामानाधिकरण सत्व है, सत्वम है माने विद्यमान है, इसीलिए वह सकर्मक नहीं बनता है। आत्मानम जानाति आत्मानम इच्छति इत्यादोचा, ताकि ये जब प्रयोग होता है आत्मानम जानाति आत्मानम इच्छति, तो इस तरह के प्रयोग में दो आत्मानों, दो तरह की आत्मा की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी किसकी? शरीर आत्मा की और अंतरात्मा की। आत्मा दो हो गई, आत्मा ऐसे कहा जाए ना कि आत्मा किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि चैतन्य को आत्मा कहते हैं। आप कहेंगे कि ये चैतन्य क्या है गुरुजी, तो चेतन में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म को कहेंगे चैतन्य, माने चेतन निष्ठो धर्म चैतन्यम, चेतन में निष्ठ जो धर्म, निष्ठ माने विद्यमान स्थित, तो चेतन में स्थित जो धर्म है वह हुआ चैतन्य, चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं। और वह जो आत्मा है वह दो प्रकार की है, एक है शरीर आत्मा एक है अंतरात्मा, माने अंतःकरण में रहने वाली जो आत्मा वह हो गई अंतरात्मा और शरीर में रहने वाली जो आत्मा हो गई वो हो गई शरीर आत्मा। तो आत्मानम आत्मना जानाति अथवा आत्मानम आत्मना इच्छति, इस तरह का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पर दो तरह की आत्मा की बात होती है, एक शरीर आत्मा की और एक अंतरात्मा की। और उससे सेंस क्या निकलता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, तत्र अंतरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीर आत्मा सुख दुखे अनुभवति। अंतरात्मा जो है वह वैसा कर्म करता है जिससे शरीर आत्मा जो है सुख दुख का अनुभव करता है। इति कर्मवत कर्मणा इति सूत्रीय भाष्योक्त रीत्या, ऐसा जो है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र में भाष्य में बताया गया है। तो यहाँ पर भिन्न अधिकरण निष्ठताम आदाय, यहाँ पर भिन्न अधिकरण में निष्ठता है। क्यों, कौन कौन है यहाँ? एक तो यह है कि कर्म और दूसरा है सुख दुख का अनुभव। तो कर्म का अधिकरण हो गया कौन? अंतरात्मा। और सुख दुख अनुभव का अधिकरण कौन हो गया? शरीर आत्मा। इस तरह से भिन्न अधिकरण निष्ठता के आदाय माने ग्रहण करके लेकर के सकर्मकत्वम इत्यवधेयम्। इसमें ज्ञा धातु को या इस धातु को सकर्मक मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भिन्न अधिकरण निष्ठता है फल और व्यापार में। इसमें ये जो आत्मानम आत्मा जानाति, इसमें जो आत्मानम है और आत्मा है, तो आत्मानम जो है यह है अंतरात्मा, और आत्मा जानाति में आत्मा जो है वह है शरीर आत्मा। इसका अर्थ यही हुआ कि अंतरात्मा जो कर्म करता है उस कर्म का जो फल है सुख दुख उसका अनुभव शरीर आत्मा करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञा धातु सकर्मक है, इस धातु सकर्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भिन्नाधिकरण निष्ठता है, यहाँ पर समानाधिकरण निष्ठता नहीं है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव जो है वह शरीर आत्मा रूप अधिकरण में होता है, और कर्म रूप जो है कर्म जो है वह अंतरात्मा रूप अधिकरण में रहता है, इसलिए ये दोनों सकर्मक हैं। इस तरह से 13वीं कारिका के द्वारा इन्होंने इसका उत्तर किया, ये जो सवाल किया था कि सारी धातुएं अकर्मक ही होने लगेंगी अगर आप व्यापार अर्थ मानेंगे, तो उसका इन्होंने समाधान किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम भिन्न अधिकरण निष्ठता और समान अधिकरण निष्ठता के आधार पर सकर्मक अकर्मक की व्यवस्था कर लेंगे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस तरह से 13वीं कारिका का पाठ आज यहीं पर संपन्न करते हैं।